नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स पॉडकास्ट के नौवे एपिसोड में। आज की जो कहानी है वो एक गैंग की है जो साउथ इंडिया में एक्टिव रहा और आज भी कहते हैं कि साउथ इंडिया में इससे खूंखार गैंग आज तक नहीं हुआ। इस गैंग की दहशत एक टाइम पर इतनी थी कि लोग अपने घरों के बाहर पहरे लगा कर रखते थे और घर वाले एक साथ नहीं सोते थे, मतलब बारी बारी करके सोते थे, कोई ना कोई मेंबर घर का जागा हुआ होता था। ये गैंग इतना जालिम था और इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनको रहम नहीं करना है। इससे पहले कि इस गैंग की कहानी मैं शुरू करूं, एक मज़ेदार बात इस गैंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। जब शुरू में ये गैंग पकड़ी गई तो पुलिस के लिए बड़ा अजूबा था कि ये गैंग है, किस तरह ऑपरेट करती, क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या बोली बोलती है। तो पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू करी तो किसी मेंबर ने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस ने बहुत मारा, कूटा, थर्ड डिग्री टॉर्चर करा, उसके बाद भी ये गैंग मेंबर्स कुछ बोलते ही नहीं थे। पुलिस वाले इनको मार मार के थक गए, उसके बाद भी किसी भी गैंग मेंबर ने अपना मुंह नहीं खोला। इसी दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर जिन्होंने इस गैंग को पकड़ा, सालों तक इस गैंग के पीछे पड़े रहे, इनके बारे में सारी बातें पता करी, वो एक छोटी सी चीज़ करते हैं, वो उनके सामने पेश करते हैं मुर्गा, जी हाँ चिकन। उनको चिकन देते हैं खाने के लिए और गैंग वाले सब कुछ उगल देते, वो सब बता देते हैं जो पुलिस वाले सुनना चाहते थे। अब सोचिए, एक छोटी सी चीज़ उनके सामने पेश की, मुर्गा खिलाया, गैंग वालों ने सब कुछ बोल दिया और वहाँ थर्ड डिग्री टॉर्चर भी ये काम नहीं करवा पाई। ये कहानी है डंडुपालिया गैंग जो साउथ में बहुत एक्टिव रहा। असल में डंडुपालिया एक गांव का नाम है जो कर्नाटका में है, वो होसकोटे तालुक में पड़ता है जो ओल्ड मद्रास रोड के पास, करीब एक घंटे की ड्राइव बेंगलोर से। इस डंडुपालिया नाम के गांव को पहले कोई नहीं जानता था क्योंकि ये एक कर्नाटका का एक पिछड़ा सा गांव, इसकी आबादी एकदम कम, 250 घर होते थे और करीब 4000 लोग यहाँ रहते थे। यहाँ ज़्यादा कोई काम काज भी नहीं था। इस गाँव में सिर्फ एक ही अमीर आदमी था जिसका नाम था वेंकट स्वामी। ये 4000 लोगों के गांव में सिर्फ इकलौता यह आदमी था जिसका अच्छा बड़ा सा घर था, 200-250 जानवर थे, भेड़ बकरियां, और वो वेंकट स्वामी गांव वालों की मदद भी करता था, कई फैमिलीज को पैसा देके उसने मदद किए। वेंकट स्वामी फिर गांव छोड़कर बाहर चला गया, वो कभी भी डंडुपालिया गाँव वापस आता था तो आकर लोगों की मदद करता था पैसे वगैरह देके। इससे ज़्यादा वेंकट स्वामी के बारे में गांव वालों को कुछ नहीं पता था। एक दिन जब वेंकट स्वामी गांव के बाहर होता है तो एक धर्मपुरी पुलिस थाने से एक पूरी पुलिस फोर्स डंडुपालिया गांव में पहुंचती है और वो पहुंचती है वेंकट स्वामी की तलाश में। उस दिन पहली बार गांव वालों को पता चला कि वेंकट स्वामी कोई शरीफ आदमी नहीं बल्कि कर्नाटका का एक नामचीन डाकू है। 50 से ज़्यादा वो डाके डाल चुका और पुलिस को पता चला कि वो डंडुपालिया गाँव में मिलेगा, उसकी तलाश करते करते पुलिस वहाँ पहुँचती है। उस वक्त वेंकट स्वामी तो पुलिस को मिला नहीं, पर बाद में पुलिस उसको किसी और गांव से गिरफ्तार करती है। उसके बाद 3 महीने बाद वो जमानत पे बाहर आ जाता है और डंडुपालिया गांव में रहता है। गांव के लोगों को अब वेंकट स्वामी के बारे में पता था और गाँव के कई नौजवान स्वामी बनना चाहते थे। वेंकट स्वामी डाका डालना ये सब करता रहता है और बाद में इसका बेटा और इसकी बेटी भी गैंग में शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे डंडुपालिया गांव के लगभग 30 लोग इस गैंग में शामिल हो जाते हैं। 90s में ये गैंग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक्टिव हो जाती है। ये डाके डालते जाते हैं और पुलिस को कोई खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है। पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सारे क्राइम्स के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। उसकी एक वजह थी, बेंगलोर के आसपास कई जगह थी जहां पर इन्होंने क्राइम करना शुरू किया। कोलार, मैंगलोर, KGF, मैसूर, ये थे कर्नाटका में। इसके अलावा होसूर, दनाकानी कोट तमिलनाडु में, चित्तूर और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। इन 10-12 जगहों पे रॉबरी हुई, पर एक चीज़ जो कॉमन थी कि रॉबरी के बाद जो वहाँ कत्ल हुआ, वहाँ पे सब लोगों के जिनको मारा गया उनका गला एक तरह से काटा गया था। वो जो गले पे जो कट मार था वो सारे जो बॉडीज थी उस पर सेम था। इससे पुलिस को लगा कि ये जो क्राइम्स और मर्डर्स हो रहे हैं वो एक ही किसी गैंग या आदमी का काम है। पुलिस ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। उसके बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन लोग हैं, कहाँ हैं। ये क्राइम्स ज़्यादा करके बेंगलोर के आसपास हो रहे थे, तो वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे एन चालापाथी, उनको ये केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई। तो वो एक टीम बनाते हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। तो एन चालापाथी उन जगहों पर गए जहाँ पर ये क्राइम्स हुए, और उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई, पहली कि जो घर होते थे जिनमें ये क्राइम किए जाते थे, ये रॉबरी होती थी, वो कॉलोनी का सबसे कोने का घर होता था। दूसरा, उस घर में बहुत कम लोग होते थे, कई कई घर में सिर्फ एक आदमी ही रहता था। और तीसरी, वो घर में बुजुर्ग रहते थे और ये सारे क्राइम्स रात को होते थे। करीब करीब 80 कत्ल हो चुके थे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। सारे के सारे कत्ल में सिर्फ एक चीज़ थी, किसने मारा ये तो पता नहीं था, पर गला एक ही तरह से काटा गया था। एन चालापाथी की इन्वेस्टिगेशन से एक और चीज़ सामने आई कि ये जो रॉबरी होती थी उसमें पैसे तो चुराए जाते थे, उसके साथ साथ गहने भी चोरी किए जाते थे। तो अब सोचिए, करीब 80 कत्ल और करीब 100 घरों में ये चोरियाँ हुई। पैसे तो ये चोर खर्च कर देते थे, गहने इतने सारे थे, उनको कहीं ना कहीं बेचते ज़रूर होंगे। तो अब एन चालापाथी अपना दिमाग लगाता है और इन इलाकों के और आसपास के इलाकों में उन जौहरियों की तलाश शुरू करते हैं जो गैरकानूनी तरीके से गहनों को खरीदते हैं। तो पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रही और कई जौहरी सामने आए जो ये छोटे मोटे खरीदारी करते थे। लेकिन एक जौहरी, जासूसों की मदद से पता चलता है कि एक जौहरी होता है जिनके पास कुछ लोग आते हैं, और इस ग्रुप में महिलाएं, बच्चे और आदमी हैं। वो अलग अलग 3-4 के ग्रुप में आते हैं और जेवर बेचते हैं, और करीब 40-50 बार वो जेवर बेच चुके हैं। इसके बाद उस जौहरी पर नज़र रखी जाती और उसको पुलिस अपने कॉन्फिडेंस में ले लेती है, और उससे कहा जाता है कि जब भी ये लोग आए पुलिस को खबर करें, और पुलिस वहाँ पर अपने जासूसों का जाल भी बिछा के रखती है। कई दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं। इस जौहरी के पास कुछ गहने रखे हुए भी होते हैं जो ये चोर उसके पास बेचने आते हैं, तो पुलिस ये गहने ले जाके विक्टम्स के घर वालों को दिखा के चेक करवाते हैं, तो कुछ विक्टम्स ये गहनों को पहचान लेते हैं। तो इसे कंफर्म हो जाता है पुलिस को कि ये जौहरी के पास ही वो क्रिमिनल्स आते हैं। फिर एक दिन पुलिस को अच्छी खबर मिलती है कि उस ग्रुप में से कुछ लोग इस जौहरी के पास आए होते हैं, और ये जौहरी पुलिस को फ़ोन करके बुलाता है और 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, उसमें एक महिला भी थी। उसके बाद एन चालापाथी की टीम इनको ले जाती है और फिर इनके साथ इंटरोगेशन स्टार्ट होता है। कोई भी मुंह नहीं खोलता, वो कहते हैं कि वो एक गरीब घर के हैं और किसी ने जेवर दिए थे उनको बेचने के लिए, और वो हया ला के बेच रहे हैं। कोई भी अपने गैंग के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहे। पुलिस ने इनको बहुत मारा पीटा, बहुत टॉर्चर किया, हर तरीके अपनाए, पर किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। एन चालापाथी को इनके बारे में एक चीज़ पता चली थी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हर फुल मून को ये एक मुर्गा काटते हैं और भगवान को वो मुर्गा अर्पित करते हैं, और साथ में वो मुर्गे के ब्लड को पीते हैं। इसके पीछे इनका लॉजिक ये था कि ये जो मुर्गा भगवान को अर्पित कर रहे हैं उससे भगवान का आशीर्वाद इनको मिलेगा। दूसरा, ब्लड पीने से जब जाके वो किसी का कत्ल करेंगे और उनका खून बहेगा तो ये कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, इनमें हिम्मत रहेगी। मतलब ये खून और ये मुर्गे को मारने से वो आदी हो जाएंगे और उससे इनको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस गैंग के हर मेंबर के लिए ज़रूरी था कि फुल मून के दिन मुर्गे को भगवान को अर्पित करेगा और उसका खून पिएगा, और इसलिए उन सब का फेवरेट भोजन चिकन ही था। इत्तेफाक से जब ये लोग कस्टडी में थे उसी दौरान फुल मून आ गया, तो एन चालापाथी इनको जेल से बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि आज फुल मून का दिन है और आप लोग जो जो करते हैं फुल मून के दिन वो कर लीजिए। तो उस दिन ये लोग पुलिस से मुर्गे की डिमांड करते हैं। इनको मुर्गा दिया गया तो ये लोग जो जो करते हैं उसको, मुर्गे को काटा, भगवान को अर्पित किया और उसका ब्लड पिया, और उसके बाद इन्होंने मुर्गा खाया। और फिर इंस्पेक्टर ने इनसे पूछा कि अब बताओ अपना सच, और उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया। फिर कहानी सामने आई डंडूपालिया गैंग की। इन्होंने बताया कि ये डंडूपाले गांव के रहने वाले थे, बहुत गरीब थे। फिर एक आदमी आया वेंकट स्वामी नाम का, जिसने इनको पैसों का रास्ता दिखाया। उसने बोला कि जैसे जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओगे तो आपको भी पैसा मिलता जाएगा। धीरे धीरे 30 से 40 लोग उस गांव के वेंकट स्वामी की गैंग में शामिल हो जाते हैं। वेंकट स्वामी खास तौर पर महिलाओं को अपनी गैंग में लेता है। वो अपनी बेटी को और अपने बेटे को भी शुरू में अपनी गैंग में ले लेता है। उसकी बेटी का पहला काम ये था कि वो सुबह सुबह अपनी बेटी को कॉलोनियों में भेजता है, चूड़ी बेचने के बहाने से या टॉयलेट क्लीनर के बहाने से, कि वो किसी तरह से वो कोशिश करके घरों में दाखिल हो जाए और वो उस घर की रेकी करे, जिससे पता चले कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन रहता है। उसके बाद ये सब देखने के बाद वो वापस आकर रिपोर्ट देती अपनी। तो इस तरह डंडूपालिया गैंग की महिलाएं सुबह निकलती, रेकी करती और आकर रिपोर्ट देती। जब ये महिला रिपोर्ट ले आती और वो एक घर पे उंगली रख देती कि ये घर सेफ है, ये कोने का है या इसमें बुजुर्ग रहते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, तो दूसरा कोई भी गैंग मेंबर इस घर को वापस देखने नहीं जाता और इन महिला की बात मानता। वो लोग मान लेते हैं कि अब इसी घर को निशाना बनाना है। उसके बाद वो रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात जैसे ही होती है वो घर पहुंचते हैं, सबसे पहले उस घर का टेलीफोन और बिजली कनेक्शन काट देते हैं। कम से कम इस गैंग में 8 से 10 लोग होते जो घर पर धावा बोलते हैं। एक आदमी टेलीफोन लाइन और बिजली की लाइन काटता, दूसरा आदमी पड़ोसियों के घर जाके बाहर से ताला लगा देता ताकि मदद के लिए कोई पड़ोसी आ ना सके। इसके बाद ये लोग घर में दाखिल होते हैं, चाकू की नोक पे सबको घेर लेते हैं। जो जो लोग भी होते हैं उनसे सामान मांगते हैं और सामान वगैरह लेने के बाद वो चाहते तो वहाँ से निकल भी सकते थे सामान लेके, पर इनमें एक अलग बात ये थी कि इनमें से घर वालों में से किसी एक को मारना ही था। तो इस तरह वो घर के एक मेंबर का गला काट के मार देते हैं। और इस गैंग की महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो गहने और पैसे रखने की। तो गहना और पैसा वो महिला के पास होता था और इन गहनों को बेचने की जिम्मेदारी भी उस गैंग की महिला की होती है। लूट की रकम किस किस के हिस्से में कितनी कितनी आएगी वो भी उस गैंग की महिला ही डिसाइड करती थी। इस तरह से इन्होंने 80 कत्ल किए और कई घरों में महिलाएं होती थी तो वहाँ पे इस गैंग के मेल मेंबर्स ने उनका रेप भी किया। दिखने में ये गरीब गांव के आम लोग थे, कपड़े साधारण से पहनते थे और इस डंडूपालिया गैंग में सिर्फ 25 से 35 साल के लोगों को शामिल किया जाता था। उसके बाद जब उनकी उम्र 35 के ऊपर हो जाती थी तो उनको किसी और काम में लगा दिया जाता था। तो जब इन लोगों ने अपना मुँह खोला तो अलग अलग 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन पे केस चला। सेशन कोर्ट ने इनमें से 11 लोगों को फांसी की सजा दी, 5 को उम्र कैद की दी और कुछ को कम दी। हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों की सज़ा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दी और कुछ के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं और कुछ जेल में हैं अभी भी और कुछ जेल से बाहर आ चुके हैं। तो इसके बाद एन चालापाती को धमकी दी गई। इन गैंग मेंबर्स में से जो लोग बाहर आ गए होंगे उन्होंने इसको धमकी दी कि तुमने हमको पकड़ा है, हम तुम्हें और तुम्हारी पुलिस टीम जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया था, उस टीम में करीब 8 से 11 मेंबर्स थे, उन सब का जीना हराम कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। तो एन चालापाती ने सरकार से मदद भी मांगी, सरकार से इसको कोई सिक्योरिटी मिली नहीं। अब वो रिटायर तो हो गए हैं लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद किया। उन्हें इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये भी पता चला था कि ये गैंग मेंबर्स कभी भी उस घर में चोरी करने नहीं जाते जिस घर में कुत्ता होता है। इस गैंग मेंबर्स को कुत्ते से बहुत डर लगता था और इनको ये भी डर था कि कुत्ते की वजह से ये पकड़े ना जाएं, और इनको कुत्तों को काबू करना आता नहीं था। तो एन चालापाती ने ट्रेंड कुत्ते बुलवाए और सबके घरों में रखवाए। 1995 में ये लोग पकड़ाए गए थे। 2005-2006 में लोअर कोर्ट का ये कुछ 11 लोगों को फांसी देने का फैसला आया था। अब हम 2020 में हैं और अब तक किसी को भी फांसी नहीं दी गई। अब इस गैंग की दबिश बहुत कम हो गई है क्योंकि पुलिस डंडूपालिया गांव में नज़र रखती है, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो उस पर ध्यान रखती है, उसकी फटाफट इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये थी कहानी डंडुपालिया गैंग की, जो साउथ इंडिया का सबसे खतरनाक गैंग आज तक माना गया है, जिसने करीब 100 डकैतियाँ, 80 मर्डर, 40 रेप, और वो एक ऐसा गैंग जिसमें पुरुष, महिला, बच्चे सब थे। थैंक यू दोस्तों तलाश इंडिया क्राइम पॉडकास्ट के 9वें एपिसोड को सुनने के लिए। हमेशा की तरह कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा। नमस्कार।